ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। अठारहवां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज सवेरे ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हुआ। इसमें 75 देशों से आए लगभग 6000 प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और विरासत से भी परिचित होंगे। सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी दिवस कार्यक्रम से हुई। इसका आयोजन ओडिशा सरकार ने केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया और कहा कि भारत में अमृत काल में विकसित भारत की यात्रा शुरू हुई है।
The largest nation in the world is developing in that matter in a democratic framework. The mantra of that journey is to advance, as Prime Minister Modi says, to advance on the two legs of technology and tradition. And the youth can surely be a defining factor in the pace of that endeavor and the realization of our goals. So once again, I welcome you to Bhubaneswar. I welcome you to the PBD 2025. I'm sure all of you will have a remarkable
सम्मेलन का औपचारिक रूप से उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सम्मेलन की एक खास बात ग्रेनेडा और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन काला कांगलू की वर्चुअल उपस्थिति है। वे सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। सम्मेलन की थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वे विशाखापत्तनम के निकट पुदीमतका में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन केंद्र परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला हरित हाइड्रोजन केंद्र होगा। इस परियोजना पर लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट हरित ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे और शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में विशाखापत्तनम में दक्षिण तटवर्ती रेलवे मुख्यालय की आधारशिला रखा जाना भी शामिल है। एक देश एक चुनाव से संबंधित दो विधेयकों के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक जारी है। इन विधेयकों में 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश विधान संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं। कानून और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों को प्रस्तावित विधेयकों के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं। 39 सदस्यीय समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य हैं। ये समिति अगले संसद सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बांग्लादेश के आवर्जन तथा पासपोर्ट विभाग ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, क्योंकि वे लोगों को जबरन गायब करने और जुलाई में हुई हत्याओं में कथित रूप से शामिल थे। मुख्य सलाहकार के उप प्रेस सचिव अबुल कलाम आजाद ने कल शाम ढाका में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। बांग्लादेश में एक ही परिवार के 5 सदस्यों सहित 8 लोगों को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीपी ने दिनाजपुर में बीरमपुर सीमा पर भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास में हिरासत में ले लिया। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार कानूनी प्रक्रियाओं के बाद इन लोगों को कल दिनाजपुर की अदालत में पेश किया गया। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाएगा। भीड़ नियंत्रण के लिए महाकुंभ क्षेत्र में 7,000 ग्रामीण बसें और 350 शटल बसें लगाई जाएंगी। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में दिन के समय ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। घने कोहरे के कारण देश के उत्तरी क्षेत्र में कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस बीच दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने कहा कि दृश्यता में सुधार होने के कारण सभी उड़ानें सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रू की जोड़ी कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन के मिक्स डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। हॉकी इंडिया लीग में आज शाम 6 बजे गुनासिका का मुकाबला तमिलनाडु ड्रैगन्स के साथ होगा। यूपी रुद्राज और हैदराबाद तूफान के बीच मैच रात 8:15 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।